नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की।
चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर वन बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं।
श्री चौहान ने कहा कि अधिक उपज वाली फसलों के विकास में देश को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ये नई प्रजातियां जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचें। कृषि मंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता की फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांताओं द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही देशवासियों के मन में अद्भुत साहस और गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि देश की शाश्वत परंपरा का प्रतीक सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के पश्चिमी तटीय इलाके प्रभास पाटन में स्थित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर की कहानी सिर्फ एक कथा ही नहीं बल्कि ये भारत माता की अनगिनत संतानों के अटूट साहस का प्रतीक है जिन्होंने देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत की पारंपरिक औषधि उपचार पद्धति आयुष को ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते में औपचारिक मान्यता मिली है। दोनों देशों के साथ पिछले वर्ष दिसंबर में व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया गया था। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक औषधि का प्रावधान किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण करेंगे। ये तटरक्षक बल का स्वदेश में निर्मित पहला पोत है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और तलाश तथा बचाव कार्यों में मदद करेगा और देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र की रक्षा सुनिश्चित करेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल रात फ्रांस और लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। डॉ जयशंकर पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री जांग नोएल बारोत से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि डॉ जयशंकर फ्रांस के राजदूतों के 31वें सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री लग्जमबर्ग जाएंगे। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। सत्र के दौरान बढ़ते प्रदूषण, पर्यावरण और शीश महल परियोजना तथा दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। योग गुरु परमहंस योगानंद की जयंती पर पूरे विश्व से उनके अनुयायी गोरखपुर स्थित जन्मस्थान पर बन रहे स्मारक पर एकत्र हो रहे हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी ने इस अवसर पर समारोह का आयोजन किया है। इसमें विश्वभर से योगानंद के शिष्य और अनुयायी भाग लेंगे। योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ था। अयोध्या में श्रीराम मंदिर की पुख्ता सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर की सुरक्षा पूरी तरह से अभेद्य होगी। देश के उत्तरी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण आज रेल सेवाओं पर असर पड़ा। रेल विभाग के अनुसार दिल्ली आने वाली 21 से अधिक ट्रेनें 2 घंटे से अधिक विलंब से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेनों की स्थिति की नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। असम में आज सुबह 4:17 पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र राज्य के मोरीगांव जिले में 50 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके आसपास के जिलों में भी महसूस किए गए। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक इस समय 42 अंक की बढ़त के साथ 85,808 पर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 18 अंक की वृद्धि के साथ 26,348 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।